ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कि आप बेहतरीन कंटेंट लिखने में जुट जाएं, एक बहुत जरूरी बुनियाद है जिसे समझना और सही तरीके से चुनना जरूरी है।
हाँ, और वो है डोमेन और होस्टिंग।
बिल्कुल, कई बार लोग इसे शायद थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, पर असल में कहानी यहीं से शुरू होती है।
एकदम सही कहा, ये किसी भी ऑनलाइन पहचान की कह सकते हैं नींव के पत्थर हैं। इनके बिना सोचिए ब्लॉग एक ऐसी बिल्डिंग जैसा है जिसका ना कोई नाम है ना पता,
हाँ, उसे लोग ढूंढेंगे कैसे?
और सर्च इंजन भी उसे ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल जरूरत नहीं है, ये आपकी पहचान का पहला कदम है।
तो आज हम इसी बुनियाद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो ब्लॉगिंग के लिए डोमेन और होस्टिंग गाइड से जुड़े कुछ नोट्स और लेखों पर आधारित है।
और हमारा मकसद ये है कि इसे आसान भाषा में समझें कि भाई ये डोमेन और होस्टिंग आखिर हैं क्या बला।
हाँ, और इन्हें चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, कौन सा प्लान किसके लिए सही है, और वो आम गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना चाहिए।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन है ना?
हाँ, डोमेन।
आखिर ये होता क्या है?
डोमेन, देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये इंटरनेट पर आपके ब्लॉग का पता है, एड्रेस,
जैसे
www.example.com है
हाँ
ना?
हाँ बिल्कुल, ये वो नाम है जिसे लोग अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं आपके ब्लॉग तक पहुंचने के लिए। ये आपकी डिजिटल पहचान का सबसे दिखने वाला हिस्सा है।
और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? मतलब नाम ही तो है।
अहमियत इसलिए है क्योंकि इसके बिना सोचिए हमें हर वेबसाइट के सर्वर का एक बड़ा अजीब सा नंबरों वाला आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता।
ओ हाँ, वो जैसे 142.251.12.1 कुछ ऐसा।
हाँ बिल्कुल वैसा। अब सोचिए हर वेबसाइट के लिए ऐसे नंबर याद रखने पड़ते तो इंटरनेट इस्तेमाल करना कितना मुश्किल हो जाता।
ये तो नामुमकिन सा लगता है।
तो डोमेन न सिर्फ इस मुश्किल को आसान बनाता है बल्कि आपके ब्लॉग को एक प्रोफेशनल और याद रखने लायक पहचान देता है।
अच्छा, मैंने सुना है कि डोमेन की अपनी एक बनावट, एक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे पते में होता है ना, गली नंबर, मोहल्ला, शहर, कुछ वैसा।
हाँ हाँ काफी हद तक वैसा समझ सकते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें, मान लीजिए blog.mybrand.in, तो इसमें आमतौर पर तीन हिस्से होते हैं।
पहला हिस्सा हुआ ब्लॉग, है ना?
हाँ
इसे सब डोमेन कहते हैं।
सही, ये अक्सर वेबसाइट के किसी खास हिस्से को दिखाता है, जैसे ब्लॉग हो गया या कोई ऑनलाइन स्टोर है तो shop.mybrand.in हो सकता है।
जरूरी नहीं कि हर डोमेन में ये हो।
नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं। फिर आता है माई ब्रांड, ये है मेन डोमेन या जिसे सेकंड लेवल डोमेन SLD भी कहते हैं।
ये मतलब ब्रांड का असली नाम हुआ।
हाँ ये वो हिस्सा है जिसे लोग सबसे ज्यादा याद रखते हैं, इसीलिए इसका छोटा होना, आकर्षक होना और आपके काम से जुड़ा होना बहुत फायदेमंद होता है। यही आपकी पहचान बनाता है।
और आखिर में है डॉट इन, ये टॉप लेवल डोमेन यानी TLD।
बिल्कुल, ये डोमेन के मकसद या फिर वो किस इलाके के लिए है इसका संकेत देता है। जैसे .com है वो आमतौर पर बिजनेस वेबसाइट्स के लिए होता है, .org संस्थाओं के लिए।
और .in मतलब भारत स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए।
हाँ श्रोत में एक अच्छी बात कही गई है, मैं उसे थोड़ा और साफ करता हूँ कि एक सोच समझकर चुना गया डोमेन स्ट्रक्चर सिर्फ पहचान नहीं बनाता।
अच्छा, और क्या करता है?
वो यूजर का भरोसा और सर्च इंजन की समझ दोनों को सही दिशा देता है। ये तीनों हिस्से सब डोमेन, मेन डोमेन और TLD मिलकर एक साफ और असरदार ऑनलाइन पता बनाते हैं।
तो ये TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन, इसके भी कई प्रकार होते होंगे, .com, .in, .org के अलावा भी।
हाँ बहुत सारे हैं और हर एक का अपना मतलब और मकसद होता है। .com तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला, खासकर अगर आपके दर्शक दुनिया भर में हैं।
और .in?
.in भारत में अगर आपके दर्शक हैं तो उनके लिए एक साफ संकेत देता है और लोकल SEO में भी शायद थोड़ी मदद कर सकता है। वर्किंग कंपनियों के लिए था पर अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी साइट्स भी काफी इस्तेमाल करती हैं। फिर .edu शिक्षण संस्थानों के लिए और .gov सरकारी विभागों के लिए रिजर्व्ड।
और आजकल तो कई नए स्पेसिफिक TLDs भी आ गए हैं सुनने में।
हाँ बिल्कुल, जैसे .blog है जो खास तौर पर ब्लॉग्स के लिए है, .tech है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स या ब्लॉग्स के लिए,
.store ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए सुना है मैंने।
सही, .info है जानकारी देने वाली साइट्स के लिए, .co को अक्सर कंपनियां या स्टार्टअप्स .com के विकल्प के तौर पर चुन लेते हैं।
तो यहाँ एक जरूरी बात निकलती है कि अगर .com नहीं मिल रहा तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती।
नहीं बिल्कुल नहीं,
कोई स्पेसिफिक TLD जैसे .tech या .blog चुनना भी अच्छा हो सकता है। ये ब्लॉग के टॉपिक को शायद पहली नजर में ही साफ कर देता है।
बिल्कुल सही, ये खुद में एक छोटा सा ब्रांडिंग स्टेटमेंट बन सकता है। ये TLDs आपके नीश मतलब आपके खास विषय को उभारने में मदद करते हैं।
तो सही TLD चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लॉग का मकसद क्या है, दर्शक कौन है और ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है।
Exactly.
तो डोमेन चुनते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्रो टिप्स ताकि गलती ना हो?
हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, इसे छोटा और सरल रखें।
कितना छोटा?
आदर्श रूप से मान लीजिए 6 से 12 अक्षर के बीच, टाइप करने में आसान हो और जुबान पर चढ़ जाए, जैसे techguru.in या travelstories.blog।
दूसरा टिप।
दूसरा, अगर मुमकिन हो और नाम अटपटा ना लगे तो अपने मुख्य विषय से जुड़ा कोई कीवर्ड डोमेन में शामिल करें, जैसे bestcamerareviews.in।
अच्छा, इससे SEO में मदद मिलती है।
हाँ, SEO और यूजर दोनों को समझने में मदद मिलती है कि ब्लॉग किस बारे में है। लेकिन ध्यान रहे, इसे जबरदस्ती ठूसना नहीं है, नाम अजीब नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा, नंबर्स और हाइफन से बचें तो अच्छा है।
क्यों?
क्योंकि ये याद रखने में मुश्किल पैदा करते हैं, किसी को बताने में कन्फ्यूजन होता है, जैसे टेक गुरु में हाइफन है या नहीं, टाइप करने में गलती की संभावना बढ़ जाती है और थोड़ा कम प्रोफेशनल भी लगता है कभी कभी।
सही बात है। चौथा पॉइंट?
चौथा, डोमेन यादगार हो और ब्रांडेबल हो। ये सिर्फ एक पता नहीं है, ये आपकी पहचान है। छोटा, आकर्षक, रचनात्मक नाम लोगों के दिमाग में रह जाता है।
ब्रांडेबल मतलब सिर्फ कैची होना नहीं?
नहीं, सिर्फ कैची नहीं, बल्कि ये भी कि वो आपके ब्लॉग के अंदाज या उसकी वैल्यू को दर्शाता हो।
पांचवा?
पांचवा, भविष्य का सोचें। ऐसा नाम चुनें जो अगर आपका ब्लॉग आगे बढ़ता है, फैलता है, तब भी सही लगे।
जैसे?
कोई उदाहरण?
मान लीजिए आप आज सिर्फ मुंबई स्ट्रीट फूड पर लिख रही हैं, तो mumbaifood.blog ठीक है, लेकिन अगर आप भविष्य में पूरे भारत के फूड को कवर करना चाहती हैं तो शायद indianfoodtales.com जैसा नाम ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट है। और आखिरी टिप?
आखिरकार, TLD ध्यान से चुने। भारतीय दर्शक है तो .in बढ़िया है, दुनिया भर में पहुंच चाहते हैं तो .com शायद ज्यादा सुरक्षित है, या फिर जैसा हमने कहा, निश स्पेसिफिक TLD जैसे .blog, .tech भी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस हो सकती है।
स्रोत में एक जगह लिखा है, आपका डोमेन नाम विजिटर के लिए पहला इंप्रेशन है, अक्सर आपके कॉन्टेंट से भी पहले।
ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए।
बिल्कुल। तो ये तो हुई डोमेन की बात, आपके ब्लॉग का पता,
एड्रेस।
हाँ,
लेकिन सिर्फ पता होने से तो काम नहीं चलता ना, उस पते पर एक जगह भी तो चाहिए जहाँ आपका ब्लॉग असल में रहेगा। हाँ। जहाँ उसका सारा सामान मतलब कंटेंट, फाइलें वगैरह रखी जाएंगी।
अच्छा, यहीं पर होस्टिंग का रोल आता है।
एग्जैक्टली।
तो डोमेन हुआ पता और होस्टिंग हुआ वो डिजिटल घर जहाँ ब्लॉग का सारा सामान रखा है। ये एनालॉजी समझने में काफी आसान है।
बिल्कुल सही। होस्टिंग वो ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस है जहाँ आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोड सुरक्षित रूप से स्टोर होती हैं। मेन से जुड़े होस्टिंग सर्वर को ढूंढता है, फिर सर्वर से ब्लॉग की फाइलें मंगवाता है और यूजर की स्क्रीन पर आपका ब्लॉग दिखा देता है।
मतलब होस्टिंग के बिना ब्लॉग इंटरनेट पर लाइव नहीं हो सकता?
नहीं हो सकता। होस्टिंग वो इंजन है जो आपके ब्लॉग को चलाता है, ये ब्लॉग की रीढ़ की हड्डी है। बिना होस्टिंग के डोमेन नाम सिर्फ एक खाली पता है।
तो अगर कोई सीरियस ब्लॉगिंग करना चाहता है तो डोमेन और होस्टिंग दोनों ही चाहिए?
हाँ, दोनों अनिवार्य हैं।
तो जैसे घर कई तरह के होते हैं, छोटे अपार्टमेंट, बड़े बंगले, वैसे ही होस्टिंग के भी प्रकार होते होंगे ना?
हाँ बिल्कुल, जरूरत और बजट के हिसाब से होस्टिंग के कई प्रकार उपलब्ध हैं। सबसे आम और जो नए लोग शुरू करते हैं वो है शेयर्ड होस्टिंग।
शेयर्ड होस्टिंग मतलब साझा घर जैसा।
हाँ, कह सकते हैं। इसमें एक ही फिजिकल सर्वर पर कई सारी वेबसाइटें होस्ट की जाती हैं। ये सबसे सस्ता विकल्प है और इसे मैनेज करना भी आसान होता है।
तो नए ब्लॉगर्स के लिए ये अच्छा शुरुआती पॉइंट है।
हाँ, अक्सर यही होता है।
लेकिन इसमें कुछ कमी भी होगी फिर, सस्ता है तो?
कमी ये है कि क्योंकि आप सर्वर के रिसोर्सेज जैसे CPU पावर, RAM, वो दूसरी वेबसाइटों के साथ शेयर कर रहे होते हैं।
हाँ।
तो अगर किसी दूसरी साइट पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो आपकी साइट की स्पीड धीमी हो सकती है।
अच्छा, मतलब पड़ोसी की पार्टी से अपने घर में शोर आ सकता है।
हाँ, कुछ वैसा ही। और सुरक्षा भी थोड़ी कमजोर हो सकती है क्योंकि आप एक ही घर में कई लोगों के साथ रह रहे हैं।
तो अगला ऑप्शन क्या है?
अगला है VPS होस्टिंग।
हाँ।
VPS मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर।
ये क्या होता है?
इसमें भी फिजिकल सर्वर तो शेयर्ड होता है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी के जरिए वर्चुअली कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर हिस्से को अपने तय रिसोर्स मिलते हैं, जैसे RAM और CPU।
तो ये शेयर्ड होस्टिंग से बेहतर हुआ?
हाँ, ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली होता है।
ये किसके लिए ठीक रहता है?
ये उन ब्लॉग्स के लिए अच्छा है जो शेयर्ड होस्टिंग से आगे बढ़ चुके हैं, जिन पर ठीक ठाक ट्रैफिक आने लगा है और जिन्हें ज्यादा कंट्रोल और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए। ये शेयर्ड से महंगा होता है लेकिन डेडिकेटेड से सस्ता।
और क्लाउड होस्टिंग, ये नाम आजकल बहुत सुनने में आता है।
हाँ, क्लाउड होस्टिंग एक मॉडर्न तरीका है। इसमें आपकी वेबसाइट एक अकेले सर्वर पर नहीं होती।
तो कहाँ होती है?
वो कई सारे जुड़े हुए सर्वरों के एक नेटवर्क मतलब क्लाउड पर होस्ट होती है।
इसका फायदा क्या है?
सबसे बड़ा फायदा है विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी। मतलब अगर एक सर्वर में कोई दिक्कत आ भी जाए तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता है, तो आपकी साइट डाउन नहीं होती।
और ट्रैफिक बढ़ने पर?
ट्रैफिक बढ़ने पर रिसोर्सेज आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं।
तो ये शेयर्ड और वीपीएस से बेहतर लगता है सुनने में।
हाँ, परफॉर्मेंस और अपटाइम के मामले में अक्सर बेहतर होता है, लेकिन ये वीपीएस से थोड़ा ज्यादा महंगा हो सकता है।
ये किसके लिए बढ़िया है?
प्रोफेशनल ब्लॉग्स, बिजनेस वेबसाइट्स या उन साइट्स के लिए जहाँ अपटाइम बहुत जरूरी है, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है।
और फिर आता होगा सबसे महंगा वाला टॉप एंड ऑप्शन।
हाँ, वो है डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें पूरा का पूरा फिजिकल सर्वर सिर्फ आपकी एक वेबसाइट के लिए रिजर्व होता है।
पूरा सर्वर?
हाँ, आपको सर्वर पर पूरा कंट्रोल मिलता है, मैक्सिमम पावर और सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये सबसे महंगा विकल्प है और इसे मैनेज करने के लिए थोड़ी टेक्निकल जानकारी भी चाहिए होती है।
तो ये आम ब्लॉगर के लिए नहीं है?
नहीं, ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली बड़ी वेबसाइटों, बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स या एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए होता है।
एक और नाम मैंने सुना था, वर्डप्रेस होस्टिंग। ये क्या इन सब से अलग है?
वर्डप्रेस होस्टिंग असल में शेयर्ड, वीपीएस या क्लाउड होस्टिंग का एक खास तरह का रूप है।
अच्छा, खास कैसे?
इसे खास तौर पर वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। मतलब सर्वर की सेटिंग, सुरक्षा के उपाय, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग सब वर्डप्रेस को ध्यान में रखकर की जाती हैं।
इसमें वर्डप्रेस चलाना आसान होता है?
हाँ, अक्सर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, अपडेट करना आसान होता है और सपोर्ट टीम भी वर्डप्रेस के बारे में जानती है।
तो अगर कोई वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, खासकर अगर वो तकनीकी झंझटों से बचना चाहता हो और अच्छी वर्डप्रेस परफॉर्मेंस चाहता है।
लेकिन ये नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग से महंगा होगा शायद?
हाँ, थोड़ा महंगा हो सकता है और इसमें वर्डप्रेस के अलावा कुछ और चलाने की उतनी आजादी नहीं होती जितनी वीपीएस या डेडिकेटेड में होती है।
बाप रे, इतने सारे विकल्प, तो कोई अपनी जरूरत के हिसाब से सही होस्टिंग कैसे चुने? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिन्हें देखना चाहिए।
जैसे कि?
पहला, विश्वसनीय अपटाइम। आपकी होस्टिंग कंपनी को कम से कम 99.9% अपटाइम की गारंटी देनी ही चाहिए।
99.9, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट लगभग हमेशा ऑनलाइन और उपलब्ध रहेगी। अगर साइट बार बार डाउन होती है तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है और एसईओ पर भी बुरा असर पड़ता है।
हाँ, कोई बार बार बंद रहने वाली दुकान पर जाना पसंद नहीं करेगा। कौन सी कंपनियां अच्छी हैं इस मामले में?
होस्टिंग, ब्लू होस्ट, साइटग्राउंड जैसी कुछ कंपनियां अच्छे अपटाइम रिकॉर्ड के लिए जानी जाती हैं।
ठीक है, दूसरा पॉइंट?
दूसरा, स्पीड और परफॉर्मेंस। वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होती है ये बहुत मायने रखता है।
हाँ, आजकल किसी के पास इंतजार करने का टाइम नहीं है।
बिल्कुल, तो ऐसी होस्टिंग चुने जो तेज स्टोरेज का इस्तेमाल करती हो, कम से कम SSD, और अगर NVMe स्टोरेज मिले तो और भी बेहतर।
NVMe? ये SSD से भी तेज है?
हाँ, NVMe स्टोरेज सीधे मदरबोर्ड के तेज लेन से जुड़ती है, जिससे डेटा एक्सेस पारंपरिक SSD से भी काफी तेज होता है। और सर्वर टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न होनी चाहिए, जैसे लाइट स्पीड सर्वर।
लाइट स्पीड सर्वर?
हाँ, ये खास तौर पे वेबसाइटों को तेजी से सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पीड के लिए बहुत अच्छा है।
ओके, तीसरा?
तीसरा, 24/7 ग्राहक सहायता, कस्टमर सपोर्ट, बहुत जरूरी है ये।
हाँ, अगर रात में साइट बंद हो गई तो?
एग्जैक्टली, जब आपकी साइट पर कोई तकनीकी समस्या आती है तो आप चाहेंगे कि मदद तुरंत मिले, तो ऐसी होस्टिंग चुने जो साल के 365 दिन 24 घंटे मदद दे सके, लाइव चैट, फोन या टिकट सिस्टम के जरिए।
और सुरक्षा?
हाँ,
आजकल हैकिंग और मैलवेयर का खतरा कितना बढ़ गया है।
बिल्कुल सही, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है सुरक्षा सुविधाएं,
सिक्योरिटी फीचर्स।
इसमें क्या क्या देखना चाहिए? होस्टिंग प्लान में मुफ्त SSL सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए।
SSL? वो HTTPS वाला?
हाँ, जो आपकी साइट को HTTPS पिन से लाता है, ब्राउजर में वो ताला का निशान दिखाता है। लेट्स इनक्रिप्ट एक लोकप्रिय और मुफ्त विकल्प है। इसके अलावा मैलवेयर स्कैनिंग, फायरवॉल, DDoS प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए।
ये सब ब्लॉग और विजिटर्स की डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं।
सही,
बैकअप का भी ध्यान रखना होगा, है ना, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो?
पांचवा पॉइंट यही है, स्वचालित बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप्स। आपकी होस्टिंग को नियमित रूप से आपकी वेबसाइट का पूरा बैकअप लेना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार, रोज हो तो और भी अच्छा।
और उसे रिस्टोर करना भी आसान होना चाहिए।
हाँ, आसानी से वन क्लिक रिस्टोर का ऑप्शन होना चाहिए। कई बार एक गलत अपडेट या कोई प्लग इन कॉन्फ्लिक्ट पूरी साइट बिगाड़ सकता है, तब बैकअप ही बचाता है।
और अगर भविष्य में ब्लॉग बहुत पॉपुलर हो गया तो क्या होस्टिंग प्लान बदलना आसान होता है?
यही है छठा पॉइंट, स्केलेबिलिटी,
मतलब बढ़ने की गुंजाइश।
हाँ, शुरुआत में आप शायद शेयर्ड होस्टिंग से काम चला लें, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी होस्टिंग चुनें जहां जरूरत पड़ने पर आप आसानी से ऊंचे प्लान पर अपग्रेड कर सकें,
जैसे VPS या क्लाउड पर।
हाँ, बिना ज्यादा डाउन टाइम या परेशानी के।
और कोई खास बात SEO या परफॉर्मेंस के लिए?
सातवां, SEO और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स देखें। अच्छी होस्टिंग में सर्वर लेवल कैशिंग होती है जो साइट को तेज लोड करने में मदद करती है।
कैशिंग?
हाँ, ये बार बार एक्सेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है ताकि अगली बार जल्दी दिखाया जा सके। CDN इंटीग्रेशन की सुविधा भी होनी चाहिए।
CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
सही, जैसे Cloudflare। ये दुनिया भर में आपकी साइट को तेजी से पहुंचाने में मदद करता है, और लेटेस्ट PHP वर्जन और HTTP/2 प्रोटोकॉल का सपोर्ट भी जरूरी है।
ये सब मिलकर साइट की स्पीड और SEO रैंकिंग सुधारते हैं।
बिल्कुल, स्रोत में एक बहुत पत्ते की बात कही गई है, सस्ती होस्टिंग चुनकर आज बचाए गए ₹100 भविष्य में धीमी साइट, खराब यूजर एक्सपीरियंस और खोए हुए ट्रैफिक की कीमत पर भारी पड़ सकते हैं।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब इसे एक निवेश समझना चाहिए, खर्चा नहीं।
बिल्कुल,
बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। अच्छा, मान लीजिए किसी ने डोमेन और होस्टिंग प्लान चुन लिया, अब आगे क्या? डोमेन रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या होती है, संक्षेप में बता सकते हैं?
हाँ, प्रक्रिया ज्यादातर रजिस्ट्रार जैसे GoDaddy, Namecheap, Hostinger, इन पर लगभग एक जैसी ही होती है।
पहला स्टेप?
पहला, उनकी वेबसाइट पर जाएं और अपना पसंदीदा डोमेन नाम सर्च करें, देखें कि वो उपलब्ध है या नहीं।
अगर है
तो
उसे अपनी कार्ट में डालें, वो अक्सर मिलते जुलते नाम या अलग TLDs भी सुझाएंगे।
फिर कितने टाइम के लिए लेना है वो चुनना होगा।
हाँ, रजिस्ट्रेशन की अवधि चुने, 1 साल 2 साल वगैरह। यहाँ एक प्रो टिप है, 2-3 साल के लिए रजिस्टर करना अक्सर थोड़ा सस्ता पड़ता है।
अच्छा,
और बार बार रिन्यू करने की चिंता भी नहीं रहती।
सही,
कुछ लोग मानते हैं कि लंबी अवधि के रजिस्ट्रेशन से गूगल को आपकी साइट की गंभीरता का थोड़ा संकेत भी मिलता है, हालांकि ये कोई बड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं है।
फिर अपनी जानकारी भरनी होगी।
हाँ, अपनी सही जानकारी, नाम, पता, ईमेल भरें और पेमेंट करें।
पेमेंट के बाद
आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करना बहुत जरूरी है वरना डोमेन सस्पेंड हो सकता है।
और एक होस्ट प्राइवेसी की बात होती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसे जरूर इनेबल करें। ये आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, ईमेल को पब्लिक WOIS डेटाबेस में दिखने से छुपाता है।
इससे स्पैम वगैरह से बचाव होता है।
हाँ, स्पैम और अनचाहे कॉल से काफी बचाव होता है। ज्यादातर अच्छे रजिस्ट्रार ये सुविधा देते हैं, कभी कभी मुफ्त, कभी कभी थोड़े से चार्ज पर।
ठीक है, और होस्टिंग खरीदने और सेटअप करने का प्रोसेस कैसा होता है?
वो भी काफी सीधा है। पहला, अपनी जरूरत के हिसाब से होस्टिंग प्रोवाइडर और प्लान चुने।
कीमतें क्या रहती है अंदाजन?
शुरुआती शेयर्ड प्लान्स अक्सर 100-250 रुपए प्रति माह से शुरू होते हैं, VPS 500 से 1000 रुपए के आसपास, और क्लाउड होस्टिंग 800 से 1500 रुपए प्रति माह या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये प्रोवाइडर और फीचर्स पर निर्भर करता है।
प्लान चुनने के बाद
खरीदते समय आपको डोमेन नाम बताना होगा, या तो आप होस्टिंग के साथ ही नया डोमेन रजिस्टर कर लें।
कई प्रोवाइडर पहले साल के लिए मुफ्त डोमेन देते भी हैं।
हाँ बिल्कुल, या फिर अपना पहले से खरीदा हुआ डोमेन इस्तेमाल कर सकते हैं।
पेमेंट के बाद क्या मिलता है?
पेमेंट के बाद आपको अपने होस्टिंग अकाउंट के कंट्रोल पैनल का एक्सेस मिलेगा, जैसे cPanel, Plesk या उनका अपना कोई कस्टम डैशबोर्ड।
यहीं से सब मैनेज होता है?
हाँ, यहाँ से आप आसानी से कुछ ही क्लिक्स में वर्डप्रेस जैसा CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादातर होस्टिंग वन क्लिक इंस्टॉलर देती हैं।
फिर SSL एक्टिवेट करना होगा।
हाँ, अपने डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करें। ये आमतौर पर कंट्रोल पैनल में सिक्योरिटी या SSL TLS सेक्शन में मिल जाता है। लेट्स इनक्रिप्ट का मुफ्त SSL ज्यादातर जगह होता है।
और बैकअप?
ऑटोमेटिक बैकअप का शेड्यूल सेट करें अगर होस्टिंग प्रोवाइडर ये ऑप्शन देता है तो।
और कुछ सुरक्षा उपाय?
हाँ, कुछ बुनियादी चीजें, कंट्रोल पैनल और वर्डप्रेस एडमिन के लिए मजबूत पासवर्ड रखें, अगर हो सके तो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA इनेबल करें, और हाँ, अपना CMS, थीम्स और प्लगइन्स हमेशा अपडेटेड रखें।
ठीक है, तो डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग भी ले ली, अब इन दोनों को आपस में जोड़ना कैसे है ताकि जब कोई डोमेन टाइप करे तो वो सही होस्टिंग सर्वर तक पहुंचे, ये कैसे होता है?
इसके लिए DNS सेटिंग्स को अपडेट करना होता है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम।
DNS ये क्या है?
इसे आप इंटरनेट की फोन बुक समझ सकते हैं। ये डोमेन नाम को सर्वर के आईपी एड्रेस से जोड़ता है।
अच्छा, तो इसे कैसे सेट करते हैं?
आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से नेम सर्वर्स के पते मिलेंगे। ये आमतौर पर दो होते हैं, जैसे ns1.hostname.com और ns2.hostname.com।
ये कहाँ मिलेंगे?
ये आपको होस्टिंग के वेलकम ईमेल में या उनके सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे।
फिर इनका क्या करना है?
अब आपको वहां जाना है जहां से आपने अपना डोमेन रजिस्टर किया था, यानी आपके डोमेन रजिस्ट्रार के पास। अपने अकाउंट में लॉग इन करके डोमेन मैनेजमेंट सेक्शन में जाएं।
वहां क्या ढूंढना है?
वहां DNS या नेम सर्वर सेटिंग्स का ऑप्शन ढूंढें। आपको मौजूदा नेम सर्वर्स को हटाकर अपने होस्टिंग प्रोवाइडर वाले नए नेम सर्वर्स डालने हैं और सेव करना है।
बस इतना ही?
हाँ, लेकिन इस बदलाव को पूरी दुनिया के इंटरनेट सर्वरों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसे DNS प्रोपेगेशन कहते हैं।
कितना समय?
इसमें आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर 48 घंटे तक लग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेट की ये फोन बुक दुनिया भर में हजारों सर्वरों पर फैली हुई है और उन सभी को अपडेट होने में समय लगता है।
तो कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है?
आप dnschecker.org जैसी वेबसाइट पर जाकर अपने डोमेन का नाम डालकर चेक कर सकते हैं कि प्रोपेगेशन पूरा हुआ या नहीं, और क्या आपका डोमेन अब नए होस्टिंग सर्वर की तरफ पॉइंट कर रहा है।
ये DNS वाली बात थोड़ी तकनीकी है, पर जरूरी है समझना। अच्छा, ये डोमेन और होस्टिंग का चुनाव SEO और ब्रांडिंग पर कैसे असर डालता है?
काफी गहरा असर डालता है।
जैसे?
पहला तो डोमेन नाम ही, जैसा हमने पहले कहा, एक छोटा यादगार कीवर्ड वाला अगर हो सके तो डोमेन नाम न सिर्फ ब्रांड बनाने में मदद करता है,
हाँ,
बल्कि यूजर को पहली नजर में विषय समझने और सर्च इंजन को आपकी साइट को सही कैटेगरी में डालने में भी मदद करता है।
और होस्टिंग की स्पीड?
होस्टिंग स्पीड तो SEO के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गूगल तेज लोड होने वाली साइटों को पसंद करता है
क्योंकि वो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देती हैं।
बिल्कुल, धीमी होस्टिंग आपकी रैंकिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसीलिए लाइट स्पीड सर्वर या NVMe स्टोरेज वाली होस्टिंग में पैसा लगाना फायदेमंद है।
और SSL का क्या? HTTPS?
सुरक्षित कनेक्शन HTTPS न सिर्फ यूजर का भरोसा जीतता है, ब्राउजर में वो ताले का निशान दिखता है ना,
हाँ हाँ,
बल्कि गूगल इसे एक रैंकिंग सिग्नल भी मानता है। आजकल SSL तो समझिए अनिवार्य जैसा है।
और डोमेन कितना पुराना है इससे भी फर्क पड़ता है।
हाँ, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन आमतौर पर पुराने स्थापित डोमेन पर सर्च इंजन थोड़ा ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए अपने डोमेन को कभी एक्सपायर न होने दें और नियमित रूप से रिन्यू करते रहें।
स्रोत में एक बात थी कि एक धीमी वेबसाइट लगभग न होने के बराबर है।
हाँ, क्योंकि ज्यादातर यूजर इंतजार नहीं करते। ये बात SEO और यूजर को साइट पर बनाए रखने दोनों के लिए सच है।
लागत के हिसाब से एक बार फिर से संक्षेप में बता सकते हैं कि कौन सा प्लान कब लेना ठीक रहता है?
बिल्कुल, शेयर्ड होस्टिंग, ये करीब 150 से 300 रुपए प्रति माह, नए ब्लॉगर्स, कम ट्रैफिक वाली निजी वेबसाइट्स के लिए सबसे सस्ता।
ठीक है।
VPS होस्टिंग, ये 500 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह के आसपास, बढ़ते हुए ब्लॉग्स, छोटी बिजनेस वेबसाइट्स जिन्हें शेयर्ड से ज्यादा पावर और कंट्रोल चाहिए। क्लाउड होस्टिंग, ये करीब 800 रुपए से 2000 रुपए प्रति माह या उससे भी ज्यादा, प्रोफेशनल ब्लॉग्स, ई कॉमर्स साइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स जिन्हें बढ़िया अपटाइम, स्केलेबिलिटी और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए।
और सबसे महंगा वाला?
डेडिकेटेड होस्टिंग, ये 5000 रुपए प्रति माह या उससे भी काफी ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली बड़ी वेबसाइट्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए।
ये कीमतें अंदाजन है, प्रोवाइडर के हिसाब से बदल सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, और शुरुआत शेयर्ड से करना और जरूरत पड़ने पर अपग्रेड करना एक आम और सही तरीका है।
तो कुल मिलाकर आज हमने ब्लॉगिंग के इस बहुत जरूरी बुनियाद, डोमेन यानी आपके ब्लॉग का पता और होस्टिंग यानी उसका डिजिटल घर को काफी विस्तार से समझा।
हाँ, हमने जाना कि ये क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इन्हें चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
और इन्हें सेटअप कैसे किया जाता है। ये वाकई किसी भी सफल ऑनलाइन पहचान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है।
बिल्कुल, और कुछ आम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं उनका सार भी यही निकलता है। डोमेन वेबसाइट का नाम पता है, होस्टिंग वो जगह जहाँ साइट रहती है,
इन्हें DNS नेम सर्वर के जरिए जोड़ा जाता है।
हाँ, डोमेन आप होस्टिंगर, गोडैडी, नेमचीप जैसे रजिस्ट्रार से खरीद सकते हैं। SSL सुरक्षा और SEO दोनों के लिए जरूरी है, और डोमेन होस्टिंग कम से कम 2-3 साल के लिए लेना अक्सर बेहतर होता है।
तो अब अगला कदम उठाने का समय है।
हाँ, स्रोत से एक प्रेरणादायक लाइन है, सही मौके का इंतजार मत करो, अपना डोमेन लो, होस्टिंग सेटअप करो और ब्लॉगिंग शुरू करो, परफेक्शन रास्ते में आ जाएगा।
बिल्कुल सही, शुरुआत करना सबसे जरूरी है।
और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। हमने तकनीकी पहलुओं पर तो बात की, लेकिन जरा सोचिए, किसी डोमेन के लिए चुना गया नाम वो सिर्फ एक पता होने से कहीं ज्यादा है।
कैसे?
आपकी पहली पोस्ट लिखे जाने या पढ़े जाने से भी पहले वो नाम आपके ब्लॉग की कहानी की शुरुआत कैसे करता है, वो पहली धारणा कैसे बनाता है। ये सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, ये आपके ब्रांड की नींव का पहला पत्थर है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।